व्यतीत करना यह ब्रह्मचर्य है। सुद परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा सुविलंब नवरि न सुलभ व्यक्त। यह जो पांच इंद्रिय और मन के विषयों की कथा है, जिससे कि संसार का आश्रय और बंदगी होता है, सो हमारे द्वारा अनेकों बार सुनी गई है, परिचित है, बहुत बार हमारे अनुभव में आई है। सो यह यात्रा तो अंतहीन है, हम क्या करें, इसमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गमाते हैं तो ठीक नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा का उदात्तीकरण सब्लिमाइजेशन करना चाहिए। हमारी ऊर्जा, हमारा जीवन पंचेंद्रिय और मन के विषयों में ही आसक्त हो करके निरंतर उसी में लगे रह करके जीवन व्यतीत कर देता है। और यदि हम उस तरफ से अपना जीवन हटा करके अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें, संचित करें और तपस्या की तरफ लगा करके अपने जीवन का कल्याण करें, वीतरागता का कल अनुभव करें, तो यही ब्रह्मचर्य है। तो ऊर्जा का उदात्तीकरण करना भी ब्रह्मचर्य है। और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि अपने जीवन में मातृत्व का विकास करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। बाह्य और अंतरंग दो प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने को आचार्य भगवंतों ने कहा। बाह्य में तो जो पांच इंद्रिय और मन के विषय हैं, उनके प्रति हमारे मन में जो उनका सेवन करने की इच्छा होती है, सो उसे त्याग कर देना। बाह्य पंचेंद्रिय और मन के विषयों का त्याग करते हैं, सो यह काम सेवन इत्यादि का त्याग करते हैं, सो यह ब्रह्मचर्य है। और अंतरंग में परिणामों की जितनी निर्मलता होती चली जाती है, उतना ब्रह्मचर्य घटित होता चला जाता है। जितनी वीतरागता मन के भीतर आती चली जाती है, रिश्तों में जितनी पवित्रता आती चली जाती है, उतना ही ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में घटित होता जाता है। सिर्फ मनुष्य है चारों गतियों में जिसने कि रिश्ते बनाए और उनका निर्वाह करता है, और रिश्तों के बीच जो एक पवित्रता है वो निरंतर कायम रखता है। पशु जगत में, देवों में, नारकियों में रिश्ते नहीं हैं। हमने तो रिश्ते बना करके, संबंध बना करके अपने मन को बाह्य में नियंत्रित कर दिया और उसके माध्यम से अपने अंतरंग के परिणामों को भी निर्मल करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। गांधी जी एक सभा में बैठे हुए थे, बाजू में ही उनके जीवन साथी कस्तूरबा भी बैठी थी। सो एक कार्यकर्ता जो कि कस्तूरबा गांधी को जानता नहीं था, वो गांधी जी से अज्ञानतावश गैर जानकारी में पूछने लगा कि ये जो बाजू में आपके बैठी हुई हैं, ये क्या आपकी मां हैं? सो क्षण भर को गांधी जी मौन रहे, फिर उस कार्यकर्ता से बोले कि हां ये मेरी मां है। तो सारे लोग हंसने लगे, जानते थे वो कि कस्तूरबा तो गांधी जी की जीवन साथी है, इसे पूछना नहीं था कार्यकर्ता को, इतना वो नहीं जानता। लेकिन गांधी जी ने जैसा जवाब दिया सो वह जवाब सुनकर के सब लोग हंसने लगे। तो गांधी जी ने कहा कि हंसो मत, मेरे लिए तो अब कस्तूरबा मां के समान ही है, मुझे थपकी दे करके सुलाती हैं, सुबह हिला करके जगाती हैं, नहलाती हैं, पंखा हाथ में लेकर के बैठ जाती, सो मुझे थाली पर भोजन कराती हैं, अब तो मेरे प्रति जैसे कि बचपन में मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है वैसा ही उनका भी भाव है। सो उसके बाद जीवन भर साथ में तो रही कस्तूरबा, लेकिन गांधी जी के मन में उनके प्रति मातृत्व का भाव जागृत हो गया। जनेंद्र कुमार थे, उन्होंने लिखा कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां कहता हूं, सो यह तो ठीक है। जिस दिन मैं अपने बच्चों की मां को भी मां कहने लगूं, उस दिन मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। ऐसा रिश्तों की पवित्रता का ये पर्व है, हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी भाव दशा में भी ऐसी निर्मलता आवे।
1978 में
हमारी बुआ जी आचार्य महाराज के दर्शन के लिए गई, वहां पर आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्यवत ले लिया। हम तो जानते नहीं थे, सो हमने बाहर आकर के बुआ जी से कहा कि आपने कौन सा व्रत लिया, क्या होता है इस व्रत में। सो मुझे छोटा जान करके बुआ जी बोली कि बेटे तुम्हें कैसे समझाऊं, कभी अवसर मिलेगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगी। और बात आई गई हो गई। बरस दो वर्ष के बाद बुआ जी के घर पर मैं बैठा हुआ था पलंग के ऊपर, तो वहीं पर एक बाजू में आकर के बुआ जी बैठ गई और 5-10 मिनट ही हुए थे कि बुआ जी के जीवन साथी जो फूफा जी थे वो भी आ गए। सुबह तो बैठने लगे कुर्सी के ऊपर, तो बुआ जी ने कहा कि मेरे एक तरफ इसी पलंग पर आकर के बैठ जा। समझ नहीं पाए ना मैं समझ पाया, क्षण भर के बाद ही दोनों तरफ बुआ जी के एक तरफ मैं बैठा हूं, एक तरफ उनके जीवन साथी बैठे हुए हैं, दोनों के ऊपर अपना एक एक हाथ रख करके बोली कि तुम मेरे से ब्रह्मचर्य के बारे में पूछते थे, सो जैसी धारा मेरी इस हाथ में प्रेम से भरी हुई अनाशक्त तुम्हारे तरफ बह रही है, जिस दिन तुम्हारे बुआ फूफा जी की तरफ भी अपने जीवन साथी की तरफ भी वैसी ही पवित्र और अनाशक्त धारा इस हाथ में बहने लगी थी तो मेरा ब्रह्मचर्य हो जाए। भैया 7 हाथ की बार से दूरी ले गए और भीतर में 1 इंची की दूरी ले रहे गए तो का काम की 7 हाथ की दूरी, जा बताओ। है तो बहुत अच्छी 7 हाथ की दूरी, निमित्त से बचने के लिए कहा गया, लेकिन निमित्त से बचने के साथ साथ हमारे उपादान को संभालने की बात भी कही गई है, वो हम भूल जाते हैं। आचार्य श्री ने सन 1982 में एक कविता पढ़ करके सुनाई थी, ईसरी में किसी पत्रिका में निकली थी कि कोई साधु बन जाता है तो गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर लेता है, उसके लिए उपदेश देने के लिए लिखी गई थी वो कविता कि अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारा काम आग में तपस्या की जला नहीं है, अभी तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है, अभी तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है, स्त्री के पीछे दौड़ना और स्त्री से दूर दौड़ भागना यात्रा दोनों में जारी है, अभी तुम्हारी मोक्ष की यात्रा शुरू नहीं हुई। आशय क्या था कि भाई जितना नेगेशन होगा उसमें कहीं अंतरंग में अट्रैक्शन न छुपो, यह भाव मैं अपने भीतर परखता रहूं, मेरे भावों में वैसी निर्मलता आई है कि नहीं आई, जैसे कि मैं बाहर से प्रयास करता हूं उस निर्मलता को पाने का। आचार्य भगवंतों ने ऐसी ही निर्मलता को ब्रह्मचरी कहा। दो बौद्ध भिक्षु चले जा रहे थे, रास्ते से जाते समय अचानक नदी किनारे गुजरते हुए देखा कि एक कोई डूब रहा है नदी में और बचाने के लिए कह रहा है, सो उसमें से जो युवा भिक्षु थे तैर के जानते थे उन्होंने ज्यादा विचार नहीं किया और नदी में छलांग लगा करके और उस डूबते हुए व्यक्ति को बचा करके किनारे पर रख दिया। जब देखा कि वह तो कोई बहन है, तब जो साथ में एक और भिक्षु थे वो कहने लगे कि अरे तुमने तो स्पर्श कर लिया, अब तो तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए, मैं तो अभी जाकर के बुद्ध से कहूंगा कि इन भिक्षु ने स्पर्श किया है बहन का, इसलिए इनको आप प्रायश्चित दो। सो पूरे रास्ते उस व्यक्ति को उस भिक्षु को टॉर्चर करते रहे और जाकर के जैसे ही बुद्ध को प्रणाम करके बैठे सो पहले नंबर उन्होंने शिकायत करी कि ये जो भिक्षु हैं जो नए नए बने हैं इनको मालूम नहीं है, इन्होंने उसका बहन का स्पर्श किया, डूबती थी पानी में सो से किनारे पर रख दिया, बचा लिया, इन्हें प्रायश्चित दो आप, ऐसा बुद्ध से कहा। सो बुद्ध ने जब सारी घटना सुनी सो जिस भिक्षु ने शिकायत करी थी उसी से कहा कि तुम ले लो प्रायश्चित, उसने कहा वाह इन्होंने स्पर्श किया और प्रायश्चित मुझे दे रहे, हम तो इनकी शिकायत कर रहे। बोले सुनो उसने तो जीवन बचाने के लिए उसे वही नदी के किनारे उतार करके रख दिया, तुम तो इतने तक धोखे ले आए, अभी तक तुम्हारे ख्याल में है, सो इस बात का प्रायश्चित ले लो। भैया भाव दशा मुख्य है, ऐसा नहीं कि अपन बाहर से तो इंतजाम करें ब्रह्मचर्य धारण करने का और अपने अंतरंग में आसक्ति बनी रहे, वे बाह्य में भी इंतजाम कहने के लिए किया, अपने अंतरंग की विशुद्धि के लिए, सो अंतरंग की विशुद्धि तो नहीं आ पाई, सिर्फ बाहर से अपन ने दूर रहने का इंतजाम कर लिया और अपने को मान लिया कि हम बहुत ब्रह्मचरी के साधक हैं। नहीं भाई, थोड़े और ऊंचे उठना चाहिए, अपने भावों में भी निर्मलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुखदेव थे, उनके पुत्र 20 वर्ष में ही वैराग को प्राप्त हो गए। तो वैराग को प्राप्त हो करके समस्त वस्त्रों का त्याग करके घर से जंगल की तरफ निकल पड़े। सुखदेव उनको, जो उनके पिताजी थे, समझाने के लिए उनके पीछे पीछे चले। नदी के किनारे से गुजरते समय वहां पर मां बहने स्नान कर रही थी। सो सुखदेव के पुत्र, जो कि वस्त्र उतार करके जंगल में विरक्त होकर के जा रहे थे, जब वे गुजरे वहां से तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और जैसे ही सुखदेव वहां से गुजरने लगे तो सबने अपने अपने कपड़े संभालना शुरू कर दिया। सुखदेव को बड़ा गुस्सा आया कि देखो, मेरा 20 वर्ष का नौजवान पुत्र निर्वस्त्र निकल गया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई और तुम कपड़े नहीं संभाल रहे, और हम इतने वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, और हम निकल रहे से तुम्हें कपड़े संभालने की पड़ी है। तो उन मां लोगों ने कहा कि महाराज सुखदेव जी, आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े नहीं संभालने पड़ेंगे। वो तो व्यक्त होकर के निकल गए, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, पर आपकी आंख कहां है जी, आप विचार करो। सो भाई, ऐसा अंतरंग के भावों का व्रत है। हमें जितना हम बाह्य में प्रयत्न करते हैं, उतना ही प्रयत्न अंतरंग में भी करना चाहिए और अपने भावों को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, महाराज ने भी लाइन सुनाई, अपन रोज पढ़ते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता सुता बहन पहचानो। तीन ही खाने रखे हैं, चौथा कोई नहीं रखा। वो हमारी आसक्ति है जो कि हम बना लेते हैं, बाकी तो रिश्ते जो पवित्रता रिश्तों के बीच है, वो तो मां और बहन और बेटी के ही रिश्तों में है। सो आचार्य भगवंतों को पूजा में ही लिखना पड़ा कि संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगी स्वरा, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, सो उन्होंने सबसे पहले इस अपने बनाए हुए रिश्ते को वहीं पर रोक दिया कि नहीं, ये चौथा वाला रिश्ता अब मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सो किसे तज दिया? तज गए जोगी स्वरा नारी, ये नहीं लिखा उसमें कि संसार में विश्वेल मां तज गए जोगी स्वरा, संसार में विश्वेल बहन तज गए जोगी स्वरा, बेटी तज गए जोगी स्वरा, नहीं, नारी तज गए जोगी स्वरा। जो वो जो मां बहन या बेटी के प्रति मेरा आसक्ति का वासना का भाव है, उसे छोड़ने पर ही आध्यात्मिक विकास होगा। सो कई लोगों ने तो बाद में लाइन सुधारने की कोशिश करी। बताओ, जैसे कि लिखे बारो बुद्धू हटे जी हटे समझदार अकेले है, सो लाइन बदल दी। आशय तो उस लिखने वाले का यही था कि मेरे भीतर जो वासना है, मेरे भीतर जो दृष्टि की निर्मलता नहीं है, सो उसके परिणाम स्वरूप मैंने ये रिश्ता बनाया है, अपनी अनंत वासना को सीमित कर लिया, इतना तो सदार संतोष व्रत मैंने ले लिया था, अब उससे भी ऊपर उठता हूं। उस रिश्ते को जो मैंने बनाया था, उससे भी ऊंचे उठ करके मैं समस्त जगत के प्रति तीन ही रिश्ते, मां का, बहन का और भाई और बेटी का, यह रखूंगा, ऐसा विचार करता है और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है। अपन इस तरह के व्रत को अपने अंतरंग में कैसे धारण करें, ऐसा विचार करना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति जरूरी है, इंद्रियों पर विजय जरूरी है और अच्छे लोगों की संगति, अच्छे साहित्य की संगति, अच्छी चीजों की संगति जरूरी है। इन सब का भी अपने ऊपर असर पड़ता है। खोटी संगति हो, खोटा साहित्य हो, तो ये सब भी निमित्त बन सकता हमारे भावों की विकृति में। सो आचार्य भगवंतों ने इससे भी बचने के लिए कहा और पांच इंद्रियों और मन के विषयों को भी धीरे धीरे परिमित करते जाओ, उनके प्रति भी आसक्ति घटाते जाओ और जितना बने उतना ठाट बाट से भगवान की पूजा करो, उनके गुणगान करो और सबसे बड़ी चीज अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखो। मानसिकता स्वस्थ, सब समझते हैं कि हमारी मानसिकता कहां अस्वस्थ हो गई। देखो सीता जी थी, सो रावण के लिए तो वही उनकी देह के प्रति आसक्ति का कारण बनी और वही लक्ष्मण जी उनके लिए श्रद्धा का विषय थी, जिनको की पहचानते समय सिर्फ नूपुर ही पहचान में आए क्योंकि वे उनके रोज चरण स्पर्श करते थे। अपने आप पहचान सकते हैं अपन की स्वस्थ मानसिकता रावण की है या लक्ष्मण जी की है। सो ऐसी ही अपने अंदर भी अपनी स्वस्थ मानसिकता है कि नहीं है, ये अपन पहचान सकते हैं। बड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता है इस स्वस्थ मानसिकता के प्राप्त करने के लिए। सीता जी का ही उदाहरण है, जब लोगों के कहने से, लोकापवाद से रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया और जब घर में रखने के लिए बात आई तो अग्नि परीक्षा देना होगी ऐसा कहा, सो पद्म पुराण में पंक्तियां लिखी हैं कि अग्नि कुंड में प्रवेश करने से पहले पंच परमेश्वर जी का स्मरण करके सीता जी ने कहा कि हे अग्नि, यदि मैंने सपने में भी राम के सिवाय किसी और को अपने मन में स्मरण किया हो तो तू क्या मुझे जलाएगी, मैं तो अपने भावों से स्वयं ही जल गई, और अगर मैंने राम के सिवाय पर पुरुष को सपन में भी स्मरण नहीं किया होगा तो तू मुझे क्या जलाएगी, मैं प्रवेश करती हूं जला के देख। ऐसा आत्मविश्वास जिसके भीतर स्वस्थ मानसिकता है उसके ही भीतर आएगा, वरना तो हम किसी और की बहन के साथ बैठ करके बात करें सो तो ठीक, लेकिन दूसरा कोई हमारी बहन के साथ बात कर रहा है तो दाल में काला है। ये हो गई स्वस्थ मानसिकता, अपने मापदंड कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, ये तो हमारी ही दृष्टि का दोष है। हमें पहले अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए कि हमारे भीतर तो मन हमने पहले गंदा कर लिया, दूसरे का हो या नहीं हो ये कैसे कह सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार की नातिन 11 वर्ष की थी, सो अपनी मां के साथ में नाना जी के घर आई वो छोटी सी बेटी, सो नाना जी के पास में खूब खेल रही थी और खेलते खेलते जैसे बच्चे लोग
चेहरे पर चुंबन कर लेते हैं, वैसा ही उसने कर लिया नाना जी को खेल खेल में। उसकी मां ने अर्थात जैनेन्द्र कुमार की बेटी ने, जो बड़ी सारी थी, उन्होंने देख लिया। जैसे ही देखा तो उस 10-11 साल की बेटी से कहती कि तुझे शर्म नहीं आती जो नाना जी को चुन्नी ले रही? अब बताओ, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि देखो तो उनके भीतर तो कोई विकार आया नहीं है, और हम अपने विकारों को उन पर आरोपित करते हैं और अपनी मानसिकता के साथ साथ उनकी मानसिकता को खराब करते। उसके बाद से इतनी भयभीत हुई वो 10-11 वर्ष की बेटी कि फिर भूल कर भी उसने वैसा नहीं किया, जैनेन्द्र कुमार को वैसा प्यार उसने नहीं किया। डर गई कि शायद समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो गया। यह जो मानसिकता की विकृति है, ये अपन बच्चों के भीतर खुद डालते हैं अपने भीतर होने की वजह से। वरना तो पहले 10-11 साल के बच्चे वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उनके भीतर कहीं कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था। आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी देखे, मेरे साथ लड़का पढ़ता था, उसने मुझे एक दिन बताया कि उस समय सन 74-75 में कि जमाना कितना बदल गया भाई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मैं रस्ते से चला जा रहा था, एक 4-5 बरस की बेटी थी, उसमें आने वाला व्रत है, सो अपन को अपने मन में स्वस्थ विचार और भावों की निर्मलता का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर से कछु ने करो तो ये जाने कह रहे हैं, बाहर से हमने जो दूरी बनाई है उसकी सार्थकता अपने मन की विशुद्धि में है। सो वह मन की विशुद्धि, मन की निर्मलता भी अपनी बनी रहे, यह अपन को आज के दिन प्रयत्न करना चाहिए। अपना मन पांच इंद्रिय और मन के विषयों की तरफ जल्दी से चला जाता है और अस्वस्थ हो जाता है, उनको पाने की आकांक्षा अपने भीतर आ जाती है। सो धीरे धीरे करके पांचों इंद्रिय और मन के विषयों के प्रति अनाशक्त हो करके अपने आत्मा का जो वितराग स्वभाव है उसमें अधिक से अधिक रमण करने का अपन प्रयत्न करें, तो भाई अपने भीतर ब्रह्मचर्य क्षण भर में आने के लिए अपन स्वयं महसूस करेंगे कि आ गया है ब्रह्मचर्य। ऐसा आज का ये दिन ब्रह्मचर्य का है, अपन को भी ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए। इसी भावना के साथ आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा देव दर्शन करने वाला है। जग जग विषया में रच पच कर गाफिल सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हूँ। का सन्नाटा वन में वन चारी चढ़ते हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तथ्यों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में। अंतर जाला महती वाणी मानो झलती बंधन तड़ तड़ टूट पड़े
पंथी गुरुवर प्रणाम उदक चंदन तंदुल पुष्प के चारों सदीप सुधूप फल आग के बहुल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज मगन परम पूज्य आचार्य श्री विद्याशागर जी महाराज परम पूज्य गुरु आचार्य गुरु अर्जुन श्री समयसागर जी महाराज परम पूज्य गुरु अर्जुन श्री भूसागर महाराज के चरणों में आने पर प्राप्त अर्जुन पान की
नित्यतम नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आप पर भाष देखो मानु शिव
कहिए जान देखो बंद विधि भान देखो स्वपर पिछान देखो कारण प्रणाली है
अनुभव ताए देखो जीव के जताए देखो काबू न सताए देखो भव्य उड़यानी है
जहाँ तह तार देखो तार के उतार देखो सुख विस्तार देखो यही की वाणी है
वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो
हे दिन वाणी भारती तो जप दिन रहे जो तेरो शरणाग है सुपावे सुखते
टिकने वाला था कि उठने में सूरज की रोशनी हो गई और उस पत्थर पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी वो पत्थर बहुत चमकदार मालूम पड़ा और उसने गौर से देखा कि अरे ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती हीरा है। अब वो क्या करे, अब वो रोए इस बात के लिए कि उसने इतने सारे पत्थर ऐसे ही फेंक दिए, तो अब उसके रोने से कोई लाभ नहीं होने वाला, उसे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि एक पत्थर जो बहुत बेशकीमती है अभी भी उसके हाथ में है और वो अभी भी उसका लाभ उठा सकता है, उसकी कीमत उसे मालूम है, उसका सदुपयोग कर सकता है। जीवन के बारे में भी ऐसा ही है, हमने पता नहीं कितनी बार ऐसे अवसर पाकर और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया होगा, लेकिन उन सब चीजों के लिए व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एक पत्थर की तरह, एक कीमती पत्थर की तरह, एक हीरे की तरह जो ये मनुष्य जीवन हमारे हाथ में है, अब उसका मुझे कैसा उपयोग करना है ये हमें देखना चाहिए। हमें इस मनुष्य जीवन में वाणी मन और शरीर ये साधन मिले हैं, ये साधन हमारे पूर्व संचित कर्मों के फलस्वरूप हमें मिले हैं, लेकिन बहुत से साधन हमने अपने जीवन को ठीक ठीक ढंग से चलाने के लिए खुद भी अपने पुरुषार्थ से यहां इकट्ठे किए हैं। उन साधनों में धन पैसा संपत्ति यश पद प्रतिष्ठा बहुत सारी चीजें हैं। और भैया कोई भी साधन अपन को मिलता है तो उसका कैसे उपयोग करते हैं, बहुत संभल के उपयोग करते हैं। घर गृहस्थी में बिजली का उपयोग संभल के करते हैं, ज्यादा खर्चा ना हो। पानी का उपयोग संभाल के करते हैं कि कल के दिन पानी के अभाव में और तकलीफ ना हो जाए। कपड़े हिसाब किताब से पहनते हैं, जहां तहां नहीं बैठते क्योंकि गंदे हो जाएंगे और फिर बार बार जो है धोएंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। इतने जतन से इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं, तो क्या ऐसा ही जतन अपने जीवन के बारे में नहीं करना चाहिए? ये जीवन भी एक साधन है, इसमें जो मन वाणी और शरीर है वो साधन है हमारे उस साध्य की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। हम इस जीवन को एक अच्छा साधन बना सकते हैं अगर हम गौर से देखें तो हमारे हमारे जीवन में निर्मलता हमारा स्वभाव है, लेकिन क्या करें वो निर्मलता हमारे जीवन से गायब हो गई है। जैसे किसी ने उसे हमारे जीवन से उठा लिया हो, जैसे कोई चोर हमारे घर में घुस जाए और हमारी संपत्ति को उठा के ले जाए। वो कब घुसता है और कब उठा के ले जाता है? जब हम सो जाते हैं, जब हम गाफिल हो जाते हैं। और यही हमारे साथ हुआ है। हमारी अपनी जो निजी संपदा है, हमारा अपना जो स्वभाव है, हमारी अपनी अज्ञानता, हमारे अपने मोह के कारण और विकृतियों में बदल गया है। स्वभावात अन्यथा भवनम विभावः। हम अपनी निर्मलता को खो बैठे हैं और हमारी उस निर्मलता के स्थान पर विकृतियों ने, मलिनताओं ने हमारे भीतर अपना घेरा जमा रखा है। हमारी अपनी प्रकृति ऐसी नहीं है, लेकिन क्या करें, जब हम अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को भुला बैठते हैं, तब हम धीरे धीरे विकृति की तरफ चले जाते हैं। और उसका एक ही कारण होता है, हमारा अपना मोह, हमारी अपनी अज्ञानता, इग्नोरेंस जिसको कहेंगे। हम ही कहीं चूक जाते हैं। हम अपनी उस चूक को देखें कि कैसे हम चूक गए हैं, तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बच्चों की कहानी सब पढ़ते हैं और बहुत प्रचलित है ये कहानी। बच्चे इसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। क्या कि एक राजा था और फिर वो राजा बहुत बलवान था, लेकिन उस राजा के प्राण तोते में थे और राजा को मारो तो नहीं मरता था, और अगर तोता हाथ में आ जाए और तोते को मार दो तो राजा मर जाएगा। ऐसी कहानी पढ़ते बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, सब बच्चे रहे होंगे, सबने पढ़ी होगी राजा की कहानी कि राजा के प्राण तोते में। वो कहानी कहानी जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन है वो सच्ची। अच्छा, अपने जीवन में झांक करके देखो, अपनी अज्ञानता और अपने मुंह को देखो, जिसकी वजह से कि पूरा जीवन विकृत हुआ है। गौर से देखें, हमारे प्राण कहां अटके हुए हैं? तोते में नहीं अटके, कहां अटके हैं? किसी की तिजोरी लूट लो, समझ लो कि मर गया होगा। तिजोरी लूटने से आदमी को धक्का पहुंचता है, आदमी को ऐसा लगता कि मैं मरा, इसका मतलब है कि तिजोरी में प्राण है। हम लोगों के साथ भी यही है। वो राजा के प्राण होते होंगे तोते में, लेकिन हमारे प्राण तो छोटी छोटी सी चीजों में अटके हुए हैं, अपने कपड़ों में, अपनी संपत्ति में, अपने मकान दुकान में, कहां कहां हमारे प्राण अटके हुए हैं। और प्राण बड़े सांसत में है, ऐसा नहीं है कि ठीक ढंग से जी पा रहे हैं। ये सारी चीजें जिनको कि हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में सहयोगी माना था, उन्हीं में हमारे प्राण अटके। ये चीजें न रहे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्राण चले जाएंगे। क्या कभी हमने इस तरह से अपने जीवन के बारे में विचार किया? करना तो चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों में अपने प्राण अटका के रखें हम, क्या ये ठीक है? क्या ये शोभा देता है हमारे लिए? नहीं, हम अपने जीवन को अपने ढंग से जिए, हम उसे सुसंस्कृत बनाएं। हमारी प्रकृति निर्मल है, विकृतियां आई हैं, हम उन्हें परिष्कृत करें। और अपनी चेतना को परिष्कृत करने का नाम ही संस्कृति है। आज धीरे धीरे करके हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति है और पाश्चात्य सभ्यता है, दोनों में बहुत फर्क है। कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत फर्क है। पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य सभ्यता है जो निरंतर बदलती रहती है। लेकिन संस्कृति बदलती नहीं है, संस्कृति जीवन को बदलती है, स्वयं नहीं बदलती। सभ्यता बाहरी चीजों को बदल करके हमें थोड़ा सा सुख पहुंचाती है, हमारे अंतरंग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। सभ्यता सिर्फ बाह्य ताम झाम देखने में आती है, लेकिन संस्कृति हमारे बाहर और भीतर दोनों तरफ से परिमार्जित करती है। हमारे भीतर की अपवित्रताओं को, मलिनताओं को हटाती है, साथ साथ हमारे बाह्य जीवन को भी, हमारे व्यक्तित्व को भी बहुत ऊंचा उठाती है। ऐसी हमारी संस्कृति है। हमने भगवान की मूर्ति बनाई, कैसे बनाई? जैसे चेतना को परिष्कृत कर किया जाता है, ठीक इसी तरह से वो प्रतीक है इस बात का। जैसे हम मूर्ति बनाते हैं, ऐसे ही हमें अपने जीवन को भी ऐसे ही तराश करके उसमें जो अपवित्रताएं हैं उनको हटा देना चाहिए। क्या करता है कोई भी मूर्तिकार? क्या पत्थर में मूर्ति बनाता है? क्या कोई देखने जाए तो वहां सिवाय तोड़फोड़ के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता? कह रहे थे कि बन रही है मूर्ति, बन का रही है, यहां तो छेनिया तोड़े से और तोड़ा फोड़ा जा रहा है सब। नहीं, मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही, मूर्ति तो उसके भीतर उसने पहले से देख ली है उस पत्थर में। वो तो उस मूर्ति के अतिरिक्त जो है वेस्टेज है, अतिरिक्त है, उसको हटा रहा है। और जैसे जैसे उसमें से जो अतिरिक्त है वो हटता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें से मूर्ति उभरती चली जाती है। ये ही विद्या हमें अपने जीवन में अपने चेतना को परिष्कृत करने के लिए लागू करनी चाहिए कि मेरे जीवन में क्या क्या अतिरिक्त है, मैं उसे हटते चले जाऊं। सब जानते हैं हमारे जीवन में क्या अतिरिक्त है। भैया, व्यर्थ और सार्थक दोनों का निर्णय कोई और थोड़ी करता है, हम ही करते हैं। हमारा राग द्वेष इन चीजों का निर्णय करता है। जो वीतरागी हैं उनसे निर्णय करवा लोगे कि क्या व्यर्थ व्यर्थ है और क्या सार्थक है, और जो व्यर्थ है उसे हम हटाते चले जाए। तो सार्थक को कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारा अपना निजी है। अगर इस तरह हम गौर से देखें तो हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं। हमारे अंदर अपनी चेतना को परिष्कृत करने की कर्मठता होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें वर्तमान की कृत्रिमताओं से बचना चाहिए। और तीसरी चीज, अपनी संस्कृति जो कि अत्यंत प्रामाणिक है, आस्था और अहिंसा, उसको बरकरार रखना चाहिए। समझ लें अपन इन छोटी छोटी सी चीजों को। हम बहुत कर्मठ हैं, हम सुबह से शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत काम करते हैं, अंततः हम पाते क्या हैं? वही थोड़ी सी सुख सुविधा के साधन, इसके अलावा और क्या पाते हैं? सुबह से शाम एक अंधी दौड़ में हम दौड़ करके और थके हारे जब घर लौटते हैं तो अपने आप से पूछें कि दिन भर में सुख शांति पाई? सुख शांति के साधन जुटाने में इतनी तकलीफें उठाई कि वो सुख शांति भी चली गई? वे चीजें जो सुख शांति के लिए इकट्ठी की थी, क्या सचमुच सुख शांति दे पाई? विचार करना। तब फिर हमारी ये कर्मठता हमारे किस काम की? वास्तव में तो कर्मठ वो है जो अपने जीवन में ऐसा कुछ हासिल कर ले जिसे कोई दूसरा छीन ना सके, जिसे कोई चुरा ना सके, और जीवन के नष्ट होने पर भी जो नष्ट ना हो सके, वास्तव में वो सार्थक है। वो संचित किया अपन ने क्या? क्या ऐसा कोई पुरुषार्थ मैं दिन भर में करता हूं जिससे मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज संचित होती है? मुश्किल है कि होती हो। जो चीजें संचित होती हैं वे एक दिन व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं। जो कल तक भली जान पड़ती थी वे उन क्षणों में तो अत्यंत व्यर्थ हो जाती है। जब हम यहां से विदा लेते हैं, अंतिम विदा लेते हैं, तब वे सब चीजें जो कल तक सार्थक मालूम पड़ती थी अत्यंत व्यर्थ मालूम पड़ती है। हम सार्थक और व्यर्थ की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे साथ जो चीज जाती है वही सार्थक है, उसी का संचय करें। जाती है हमारी अपनी भलाई और बुराई, और कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, पर हम जोड़ जोड़ करके उन सब चीजों को रखते हैं। और ध्यान रखें, जो जैसा होता है वैसा करता है, और जो जैसा करता है वैसा होता चला जाता है। दोनों चीजें, स्टाइल इज द मैन, मैन इज स्टाइल, ऐसा लिखा हुआ है। जो जैसा करता है मानिएगा कि वो वैसा है। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैं झूठा हो गया, ठीक है ना। मैं चोरी करता हूं तो मैं चोर कहलाऊंगा, ये बहुत सीधी सी चीज है। मैं जो करता हूं वैसा होता चला जाता हूं। तो फिर मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किस तरह की चीज करूं, मेरी अपनी कर्मठता किन चीजों के लिए होनी चाहिए, मेरा अपना पुरुषार्थ किस दिशा में होना चाहिए। और दूसरी चीज, कोई चोर हो तभी ना चोरी करेगा, कोई झूठा हो तभी ना झूठ बोलेगा। तो हम जैसे होते चले जाते हैं वैसे ही फिर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहले हम करते हैं, फिर बाद में हम उन्हीं सब चीजों को दोहराने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं। पहले हम झूठ बोलते हैं, आत्मा हमारी झूठी हो जाती है, और फिर उस झूठी आत्मा से हम झूठ बोलने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं। ये एक विशेष सर्कल जो हमने खुद अपने लिए निर्मित किया है, किसी और ने नहीं निर्मित किया है। तो बहुत जरूरी है इस बात को कि हम जैसा होना चाहते हैं वैसा ही क्यों ना करें। हम करने से पहले देख लें कि इसको करने से मैं होऊंगा कैसा, मुझे क्या प्राप्त होगा, ये तो देखते हैं हम। मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त होगा, लेकिन मेरी चेतना कैसी हो जाएगी वैसा करने से। अगर ये हम ध्यान रखें तो चेतना को हम आसानी से परिष्कृत कर सकते हैं। हम जैसा करते हैं वैसी हमारी चेतना होती चली जाती, और जैसी चेतना होती चली जाती फिर वैसा करने के लिए हम मजबूर होते चले जाते हैं। हमें ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि यदि हम वैसा नहीं होना चाहते, जैसा हम नहीं होना चाहते वैसा हम ना करें, और कम से कम अपनी चेतना को परिष्कृत करने में आलस तो ना करें। हम बाकी सब चीजें अपने जीवन में संचित कर रहे हैं, करें ठीक है, लेकिन मेरी चेतना को जो चीज गंदी करे उस चीज को तो ना करें। सिकंदर ने पूरा राज्य पाया था, शायद उन्हीं के जीवन की घटना है। और वो एक दिन कहीं जंगल में भटक गए थे तो बहुत प्यास लगी थी उनको। तो जब प्यास लगी तो किसी से कहा कि पानी खोजो, तो बामुश्किल पानी मिला और एक लोटे पानी मिला। लेकिन वो जिसके पास एक लोटे पानी था उसने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे राजा से कि वो मुझे क्या दे सकता है इस एक लोटे पानी के एवज में। तब उसको लाया गया था कि चलो हमारे राजा से पूछ लो एक लोटे पानी का क्या दोगे। तो राजा ने कहा कि सुनो, अगर तुम मुझे एक लोटा पानी देते हो तो मैं अपना आधा साम्राज्य तुम्हें दे सकता हूं। उसने कहा नहीं, सौदा बहुत सस्ता है, जरा सोच लो आप, इस समय आपके प्राण बिल्कुल कंठगत हैं, मरण आपका निश्चित है, इस एक लोटे पानी के बिना आप मर जाएंगे, फिर से सोच लो आप। तब राजा को क्या कहना पड़ा था कि पूरा साम्राज्य देता हूं इस एक लोटे पानी के लिए। तब बहुत जोर से हंसा था वो गरीब व्यक्ति जिसके पास एक लोटा पानी था। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, पूरा साम्राज्य काय के लिए, काय के लिए, एक लोटे पानी के लिए, इतनी मेहनत करी, पूरा साम्राज्य आपने हासिल कर दिया, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गया, अभी तो सार्थक है सिर्फ एक लोटा पानी। हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो व्यर्थ इकट्ठी करके सोचते हैं कि इन सब से मेरा जीवन बहुत परिष्कृत होगा, इन सब से मेरी चेतना बहुत ऊंची उठेगी, इन सब चीजों से आज तक हमारी चेतना ऊंची नहीं उठी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज घर जाकर के और आप सारी चीजें बाहर फेंक, क्योंकि कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम विचार क्यों नहीं कर रहे कि ये सब चीजें मेरे पास हैं, काहे के लिए मैंने संचित की थी कि मेरी चेतना ऊंची उठे, मैं चेतना को हमेशा परिष्कृत करते रहूं, यही मेरे अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सारी कर्मठता इस बात में मेरी लगे, सारा पुरुषार्थ इस बात में मेरा लगे, और दूसरी चीज मैं कृत्रिमताओं से बचूं। आज कृत्रिमताएं बहुत हैं, औपचारिकताएं बहुत हैं, जीवन पूरा कृत्रिम हो गया है, जरा भी नेचुरल नहीं रहा है। नेचुरल तो उन क्षणों में रहता है जब थोड़े से हम अपने शरीर से भारी भारी हो जाते हैं और डॉक्टर सलाह देता है कि सुबह सुबह और किसी गार्डन में टहलो, तब जरा नेचुरल हो करके नेचर के निकट जाते हैं, बाकी तो नहीं जाते। बाकी तो हमने जंगल की सीनरी भी घर में ही लगा रखी है, जंगल में भी जाने, सीनरी में संतुष्ट हैं। कृत्रिमता के मायने सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने जंगल में रहना बंद कर दिया और सीमेंट कंक्रीट में रहने लगा हूं, कृत्रिमता इतने अकेले से नहीं आती। हमारे अपने जीवन में जो कृत्रिमता आई है वो हमारी अपनी पराधीनता से आई है। आज हम अपने छोटे छोटे से कामों के लिए कितने डिपेंड हो गए हैं छोटी छोटी सी चीजों पर। कृत्रिमता वहां से आती है, औपचारिकता वहां से आती है। हम होना चाहिए था स्वावलंबी, जो जितना स्वावलंबी है वो उतना नेचर के निकट है, और जो जितना दूसरे साधनों पर निर्भर है, परावलंबी है, पराश्रित है, वो उतना कृत्रिम जीवन जी रहा है। आज हमें कितनी चीजें चाहिए अपने जीवन के लिए, और उन सब चीजों के उपयोग में हम अपने जीवन की वास्तविकता को भुला बैठे हैं और आलसी हो गए हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत नहीं कर पाते हैं। सब चीजें सपोज करें कि हम समझने के लिए कि पहले बहुत सारी मेहनत करते थे और मेहनत करने से हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहता था, हमारा मन भी प्रसन्न रहता था, क्योंकि अपनी मेहनत से जो चीज हम करते हैं उस चीज को आप अगर अपनी मेहनत से रोटी बनाओ तो उसका स्वाद अलग रहेगा, और अगर किसी आप होटल में जाकर के और चपाती खरीद के लाओ और उसने कैसे बनाई वो तो छोड़ो, लेकिन उन बनी हुई दूसरे की चपाती को खाओ तो वो आनंद नहीं आएगा, और अपने हाथ से बनाई होती तो। ये है कृत्रिमता। इस तरह इतने आज जैसे संडे है तो ये मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में इतने लोगों को छोड़ दो, बाकी लोगों को सोचो आज भी वाकई संडे मनाएंगे, घर में खाना नहीं बनाएंगे, ये मतलब संडे। देखना आपने हम लोगों के ढंग क्या हो गए, हम काम नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे, मतलब आप संडे, जबकि होना तो ये चाहिए था कि आज तो अपने मन से सारी चीजें करेंगे, आज तो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आज तो नौकर को भी कह देंगे कि जाओ भाई तुम आराम से अपने घर जाओ, आज तो हम सारा काम अपने हाथ से करेंगे, ऐसा नहीं। आज तो पुजारी जी से भी कह देंगे कि भाई आज तो मुझे दुकान नहीं जाना है, इसलिए तुम द्रव व्रव धोके मत रखना, आज तो मैं अपने हाथ से धोऊंगा, आज तो श्री जी की पूजा भी मैं अपने हाथ से धुली द्रव से करूंगा, और आज तो मैं खाना भी अपने हाथ से हैंडल करूंगा, सारा दिन आज मैं देखूंगा कि मैं कितना कर सकता हूं। ये रचनात्मक कार्यों में हमारी एनर्जी लग जाती तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती, हम प्रकृति के निकट होते, लेकिन ये कृत्रिमताएं हमने ओढ़ ली और निकल जाते हैं हम बढ़िया से कपड़े पहनकर अपने बच्चों को साथ लेकर किसी गाड़ी में, और बैठ जाते हैं कहीं किसी होटल के गार्डन में और निकाल देते हैं पूरा दिन अपना इस तरह से। ये क्या चीज है, ये कृत्रिमता से भरा हुआ जीवन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल उससे निश्चिंत रहिएगा, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें, हमने तो यही सोचा था कि ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, दूसरे लोगों से हटकर हैं। देखो गांव में उनको कहां फुर्सत है, अपन इतने शहर में आ गए, इतने सभ्य हो गए हैं और इतने ज्ञानवान हो गए हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए, तो अपने तो यही सोचा था कि ये सब चीजें करने से अच्छा होगा, लेकिन हुआ क्या, अंततः हमारी चेतना और अधिक मलिन हुई कि नहीं हुई, हमने अपने लिए ही ये सब करा था, किसी के कहने से नहीं करा था, हमने अपनी बुद्धि से करा था। ठीक है, हमने तो यही सोच के करा था कि ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब अनुभव कर लिया भैया कि ये अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं हम छोड़ पा रहे हैं? सवाल ये है, क्यों हम आने वाली पीढ़ी को भी यही सौंप रहे हैं? जिससे हमने कुछ नहीं पाया वो हम क्यों किसी और को सौंपे? विवेकानंद को उनके पिता ने जब पूछा था विवेकानंद ने कि उत्तराधिकार में क्या देते हो, तो मालूम क्या कहा था? उत्तराधिकार में मैंने कुछ तुम्हारे लिए जोड़ के नहीं रखा, तुम्हें स्वयं अपने पुरुषार्थ से जोड़ना हो तो जोड़ लेना, और सुनो मांगते हो तो वो संग टंगा है सामने दर्पण, उठा के लाओ। और उठा के लाए दर्पण तो सौंप दिया कि ये सौंपता हूं तुम्हें अपने उत्तराधिकार में। अरे दर्पण? हां दर्पण सौंपता हूं कि देखते रहना कैसे हो, कैसे होना चाहते हो, बस इतना ही। दर्पण में देखते रहना कैसे हो गए हो, होना कैसे चाहिए था। हम अपने सामने अगर आईना रख लेंगे, ये आईना ही हमें रखना पड़ेगा अपने सामने कि हम कैसे होना चाहते हैं और हो कैसे गए हैं। हमने सोचा तो कुछ और था, और वैसा सोच करके हमने जीवन शुरू किया था। सबको शुरू करते हैं अपना जीवन, विवाह के बाद सबका जीवन शुरू होता है, और सबके अपने सपने होते हैं, सबके अपने सोच होते हैं, और उससे जीवन शुरू करते हैं, और अंततः हम कहां चले जाते हैं? हमारी चेतना परिष्कृत होने की जगह पर और मलिन और विकृत होती चली जाती है जिन सब चीजों से, तो वे चीजें सब व्यर्थ है। अरे भैया, अगर संचय ही करना है तो क्या व्यर्थ को कोई संचित करता है, कृत्रिमताओं को संचित करता है? नहीं, वो तो उन चीजों को परिष्कृत करता है, उन चीजों को हटाता ही है। एक व्यक्ति ने कहा कि संचय करना है तो मैं संचय करता हूं, कहीं उसको पड़ा हुआ एक ठो जूता मिल गया, उसने घर में रख लिया, उससे पूछा कि क्यों, क्या करोगे उसके? बोले जब दूसरा मिल जाएगा तो पहनने के काम आएगा। मैंने भी एक ऐसे ही चलते चलते आपसे कह दिया, ये ऐसे ही तो हम अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आज घर जाकर के देखना कि कैसी पड़ी हुई है, काम आएंगी, अभी तक तो नहीं आई, कहां कब से पड़ी है, लेकिन मन में काम आएंगी। कचरा तमाम इकट्ठा करके रखा, यहां तक कि मैं पढ़ रहा था कल सुबह या शाम को, कल पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हंसी आई उसको पढ़ने के बाद। उसमें लिखा था कि संचय करने के नाम पर तो ऐसे हैं हम लोग, इतने होशियार हैं कि कोई ने गाली दी तो उसको भी अपने भीतर रखे रहते हैं, वो क्षमा भी मांग ले तो उसकी गाली अपने भीतर रखी रहती, कई दिन तक रखी रहती है, अपन नहीं रखी रहती। किसी ने कोई बुरी बात कह दी तो उसको तुरंत नहीं लौटाएंगे, रख